जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब बोलिए भगवान का नाम बोलिए चलो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Goranitai, 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 Jaya Goranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nittai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gora Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंसाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंसाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गणिताई की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंद है। ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुद्भक्तिरसं प्रयत्नै अपायनं मामभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्परदुःखदुःखी सनातनं प्रभुमाश्रयामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे आज तीन श्लोक है। श्लोक 7, 8 और 9। 9 का आवृत्ति करें ब्रोजी। तात्पर्य 9 में है तो 9 का आवृत्ति करेंगे। श्री भगवान उवाच कथम कश्यपदायाद पुंशल्यामयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति। श्री भगवान उवाच कथम कश्यपदायादा पुंशल्यामयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति। श्री भगवान उवाच कथम कश्यपदायादा पुंशल्यामयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति। श्री भगवान उवाच कथम कश्यपदायाद पुंशल्यं मही संगता श्री भगवान उवाच कथम कश्यपदायाद पुंशल्यामयि संगतः विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति श्री भगवान उवाच कथं कश्यपदायाद पुंशल्यामयि संगतः विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति श्री भगवान उवाच कथं कश्यपदायाद पुंशल्यामयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति कथं कश्यपदायाद पुंशल्यामयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति श्री भगवान उवाच कथं कश्यपदायाद पुंशल्यामयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति श्री भगवान उवाच कथं कश्यपदायाद पुंशल्यामयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति श्री भगवान उवाच कथं कश्यपदायाद पुंशल्यामयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति श्री भगवान उवाच कथं कश्यपदायाद पुंशल्यामयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की श्री भगवान उवाच मोहिनी मूर्ति के रूप में श्री भगवान ने कहा कथम ऐसा कैसे है कश्यप दायादा आप सभी कश्यप मुनि के वंशज हो पुंशल्याम मनुष्यों के मन को विचलित करने वाली वैश्या को मैं मेरी संगतः संगति में आए हो विश्वासम विश्वास पंडितः विद्वान जातु किसी भी समय कामिनीषु स्त्री में न नहीं याति होता है ही निसंदेह अनुवाद दोहराइए मोहिनी रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों से कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्रो, मैं तो मात्र एक वैश्य हूं, तुम लोग किस तरह मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो? विद्वान पुरुष कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करते हैं। तात्पर्य सुने, महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिवेता चाणक्य पंडित ने कहा है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री का रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों को सचेत किया कि वे उन पर अधिक विश्वास न करें, क्योंकि वे उन्हें अंततः धोखा देने के लिए मोहिनी रूप में प्रकट हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप में उसने उनके समक्ष प्रकट होने का अपना प्रयोजन प्रकट करते हुए कश्यप के पुत्रों से कहा, यह सब क्या है? तुम सभी एक महान ऋषि की संतान हो, फिर भी तुम ऐसी स्त्री पर विश्वास कर रहे हो जो अपने पति, अपने पिता या पति द्वारा सुरक्षा के अभाव में एक वैश्य की तरह इधर उधर घूम रही है। सामान्यतः स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो फिर ऐसी स्त्री का क्या कहना जो एक वैश्य की भांति इधर उधर घूम रही है। इस प्रसंग में कामिनी शब्द महत्वपूर्ण है। स्त्रियां और वे भी सुंदर तरुण स्त्रियां मनुष्य की सुप्त कामवासना को जगाती है। अतः मनु संहिता के अनुसार प्रत्येक स्त्री की रक्षा या तो उसके पति या पिता द्वारा या उसके प्रौढ़ पुत्रों द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे संरक्षण के अभाव में स्त्री का शोषण होगा। वास्तव में स्त्रियां पुरुषों द्वारा भोगी जाना पसंद करती हैं। जो ही कोई स्त्री पुरुष द्वारा भोगी जाती है वह सामान्य वैश्या बन जाती है। इसी की व्याख्या मोहिनी मूर्ति रूप श्री भगवान द्वारा हुई है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो सर्वप्रथम आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, कृपा की याचना करता हूँ कि जो कथा कहें उससे हमारा हृदय पवित्र हो और आप सबको आनंद मिले कथा से। ऐसे इस प्रसंग पे मैं नहीं बोलना चाहता था। प्रसंग तो अच्छा लगता है पढ़ने में, मगर कई कारण से, एक तो चर्चा जैसी है तो कोई ज़्यादा उम्र का व्यक्ति बोले तो सुंदर लगता है, और खुद ही फंसे हुए लोग बोलें तो अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा तात्पर्य भी प्रभुपाद जी काफ़ी स्ट्रांग दे रहे हैं, और उसके प्रति दोष बुद्धि होना भी कई लोगों के लिए बड़ा स्वाभाविक है। तीन श्लोक पर चर्चा करनी है तो दो श्लोक पहले पढ़ देते हैं फिर आगे पढ़ेंगे प्रभु जी। तो ये असुर लोग, ये तीनों श्लोक अलग अलग लोग बोल रहे हैं। पहला श्लोक असुर लोग बोल रहे हैं, दूसरा श्लोक सुखदेव गोस्वामी और तीसरा भगवान बोल रहे हैं। तो इस श्लोक में, श्लोक संख्या 7 में, वयम कश्यप दायादा भारतीकृत पौरुषः विभजस्व यथा न्यायम नैव भेदो यथा भवेत। कह रहे हैं कि हम सभी देवता तथा असुर दोनों एक ही पिता कश्यप की संतान हैं और इस तरह से भाई भाई हैं, किंतु मतभेद के कारण हम अपना अपना पराक्रम दिखला रहे हैं। अतएव तुमसे हमारी विनती है कि हमारे झगड़े का कृपया निपटारा कर दो और इस अमृत को हमें बराबर बराबर बांट दो। इति उपामंत्रितो दैत्यर माया योषित वपुहरी प्रहस्य रुचिरापांगीर निरीवीक्षण इदम अब्रवीत। तो ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सीन वर्णन कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। इस प्रकार असुरों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सुंदरी का रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हंसने लगे। फिर स्त्री सुलभ मोहक हाव भाव से उनकी ओर देखते हुए उस सुंदरी ने इस प्रकार कहा। तो सुंदरी ने क्या कहा वो हम पहले सुन चुके हैं। वो भगवान बोले, हे कश्यप मुनि के पितरों पुत्रों, मैं तो मात्र एक वैश्य हूँ, तुम लोग किस तरह मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो? विद्वान पुरुष कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। तो इस तरीके से आप लोग सुन रहे हैं इस समुद्र मंथन की लीला को, और भगवान समुद्र मंथन के शुरू में ही देवताओं को, उससे पहले जब भेज रहे थे देवताओं को बलि महाराज के पास, तभी बोल दिए थे कि घबराना मत किसी भी चीज से, इंतजार करना अमृत के प्रकट होने का, और उससे पहले असुर लोग जो फालतू डिमांड करे उसको भी सैंक्शन करे, ओके करना, लालच मत करना, हमें लास्ट प्रोडक्ट जो है अमृत, हमें अमृत पे नजर रखनी है। तो इंद्र ऐसे ही फॉलो किया जैसा भगवान बोले थे, वो कभी किसी चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं करते थे। असुर लोग बोलेंगे ये हमें मिल, हाँ ले लो, चलो ये मिलना चाहिए ये ले लो, जैसा जैसा बोलते थे चलता रहा। लास्ट में जब अमृत भी प्रकट हो गया और भगवान धन्वंतरी के हाथ से छीन के भाग गए असुर लोग अमृत का कलश, तो देवता लोग सब चेहरा देख रहे थे भगवान का, बोले कि बाकी सबके लिए लड़ाई करने के लिए नहीं बोला था, इसके लिए लड़ सकते हैं। मगर देवता अपने स्वाभाविक समर्पण के कारण भगवान पर ही निर्भर है, और भगवान उन लोगों की मानसिकता को देख के तुरंत इशारा किए, ठीक है डरो मत, हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे? बोले असुर है, आपस में लड़ाई करवा के सब बर्बाद कर देंगे, उतना मुश्किल नहीं है इन लोगों को नष्ट करना, इतना मुश्किल नहीं है, अभी आपस में झगड़ा करा देंगे। भाई दो चीजों के लिए प्राय असुर झगड़ा करते रहते हैं, स्त्री के लिए और धन के लिए। तो धन के लिए झगड़ा तो शुरू हो ही गया, अमृत का कलश, बोले दूसरी वस्तु और डाल दूंगा तब तो बिल्कुल इन लोगों को खत्म कर देना है। तो इस तरीके से बीच में भगवान इंटरफेयर किए, भगवान मोहिनी का रूप धारण करके वहां पर प्रकट हुए। तो इधर जैसे ही मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हुए तो सारे के सारे असुर जो थे उसको देखते ही उसके पीछे भागना शुरू कर दिए। वो बीच में पहले भी जो छोटे असुर थे, बड़े बड़े असुर अमृत का कलश लिए हुए थे जो ज्यादा शक्तिशाली थे, तो जो छोटे छोटे असुर थे जो कम शक्तिशाली थे वो सनातन धर्म याद करने लग गए थे कि अरे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जो लोग मेहनत किए सबको बराबर मिलना चाहिए। तो इस तरीके से उनका वास्तव में उद्देश्य ये नहीं था कि देवताओं को भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए, बराबर बटना चाहिए, उनका ये कहने का बस इतना मतलब था कि किसी तरह हमको भी मिलना चाहिए। तो अब जब मोहिनी वहां प्रकट हुई और सारे के सारे जो असुर थे मोहिनी के पीछे भागने लगे, और तुरंत एकदम सबकी एक स्वर से आवाज निकली, अहो रूपम अहो धाम, अरे कितना सुंदर रूप है इसका, कितना लावण्य निकल रहा है इसमें से, अहो अस्य नवम वया, इसकी नई नई वया यानी जवानी, इसकी नई नई जवानी तो देखो, इस तरीके से कह रहे हैं। और असुर लोग एकदम बावले होके मोहिनी के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे ये वर्णन सुनने में तो कभी कभी लग सकता है कि कैसा वर्णन है। एक बार की बात है, उधर मैं मधुबनी में सर्वदेव प्रभु का गाँव है संत नगर, तो वहाँ एक कथा बोल रहा था। अब कथा प्रसंग में जो आया तो बोलना ही पड़ेगा, और दूसरी बात ये भी थी, कुछ इच्छा भी थी। उस गांव का क्या सिस्टम था कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह लगता है तो हजारों लोग जुड़ जाते थे, और कथा में 800-900 लोग बस केवल, और ऑर्केस्ट्रा वगैरह कुछ लगेगा तो 30,000-40,000 ऐसे ऐसे संख्या चली जाएगी, बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो अब थोड़ा जैसा श्लोक में लिखा था तो वैसा ही बोल रहा था मैं, ज्यादा उसको बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा था, जानबूझ के, और संस्कृत बीच बीच में बोल बोल के, जिससे कि लोगों को ये बुद्धि ना हो कि देखो कैसा व्यास उठा लाए, कोई मर्यादा नहीं है इसको। तो तब तक एक व्यक्ति जो वहां का अध्यक्ष था गुस्सा हो ही गया कि देखो क्या बोले जा रहे, व्यासपीठ पे बैठ के ऐसे बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए। दूर से मेरी दृष्टि चली गई, कथा तो मैं बीच में बंद किया, उधर भक्त से प्रोजेक्टर लगवाया, मैं बोला देखो भागवत का श्लोक है, तो भागवत में लिखा गया है, एज इट इज बोल रहा हूँ, कुछ बना के नहीं बोल रहा। तो अब तो एकदम शक्ल देखने लगा, मैंने कहा तो अब ये भी सुन लो कि ये वर्णन क्यों किया गया है। ये वर्णन इसलिए किया गया है कि हम सबके मन में, हम सुखदेव गोस्वामी के विषय में पढ़ते हैं कि सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, सभी जीवों के हृदय की बात जानने वाले सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि हम सबके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा के दिखा रहे हैं कि क्या होता है हम सबके अंदर। तब तो बेचारा एकदम चुप हो गया, चुपचाप सुनता रहा। मगर देखिए सुखदेव गोस्वामी के मुख से वैसी ही वस्तुओं का वर्णन सुनने से फायदा ये होगा कि हृदय शुद्ध हो जाएगा, इन सब कामनाओं से, इन सब लालसाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। जब तक इनसे मुक्त नहीं होगा तब तक भगवान का शुद्ध प्रेम कैसे पाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी बहुत अच्छे से वर्णन कर रहे हैं, और हमारे आचार्य लोग उसको बड़ा खोल खोल के और भी आगे बता रहे हैं कि क्या क्या असुर बोले होंगे, क्या क्या मोहिनी सोची होगी, सब कुछ बता रहे हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे असुर जो थे वो तो पूर्णतया मोहित थे, और तब उससे कई प्रश्न पूछने लगे, का तुम कंचपलाक्षी कुतोवा किम चिकीशसी, तुम्हारा गांव कौन सा है, किसकी हो, किसकी हो मतलब किसकी पत्नी हो नहीं, किसकी पुत्री हो, किस जाति की हो, आगे मित्रता करेंगे, विवाह क्या क्या करने के लिए यहाँ पर आई हो। तो इस तरीके से अनेक प्रश्न पूछे। उसके बाद बोले, अरे रहने दो, ये सब जान के हम क्या करेंगे कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो, तुमको तो विधाता ने हम लोगों के लिए भेजा है, भगवान हमारे प्रति बहुत प्रेम करते हैं, वो भगवान तो सामने खड़े ही हैं, वो अजीत के रूप में भी भगवान थे, धनवंतरी के रूप में जो अमृत बांटने वाले थे वो भी भगवान थे, मगर इनको इसी को भगवान की कृपा के रूप में देख रहे हैं कि भगवान बहुत कृपालु है, हम लोग के मन को इंद्रियों को प्रीतिम बड़ा प्रसन्न कर दी तुम, विधा तुम संग्रहण किम, ये विधाता की कृपा नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे, तो रहने दो, मत बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्यों क्या तुम्हारा काम है, कुछ मत बताओ, हम जानना भी नहीं चाहते, हम तो केवल तुमसे मित्रता करना चाहते हैं। तो तब तक खुद एक आशंका की है कि यदि मोहिनी पूछते, अच्छा तो तुम लोग यहाँ क्यों जुटे हो, मेरे से पूछ रहे हो कि मैं क्यों जुटी, मैं क्यों यहाँ पर घूम रही हूँ, तो पहले तुम लोग बताओ कि तुम लोग क्यों जुटे हो, या फिर एक इंट्रोडक्शन का स्टाइल होता है, आपको सामने वाले का नाम पूछने तो क्या बताते हैं, प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरा नाम ध्रुव नरेन दास, तो वो सामने वाला अपना नाम खुद बताएगा। तो अब जानना चाहते हैं कि ये यहाँ क्यों घूम रही है, हमको तो लगता है कोई पति ढूंढती होगी, तो इसको बताने के लिए बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्यों जुटे हैं, तो जिससे कि वो भी बताए कि मैं तो तुम्ही लोगों के लिए यहाँ पर आई हूँ, और बात भी सत्य, अगर भगवान ऐसा बोलते भी हैं उन्हीं लोगों के लिए भगवान वहाँ पर आए हैं। तो कल आप लोग सुने कि बोल रहे हैं, सात तमन स्पर्धे माना नाम एक वस्तु मानिनी, हे मानिनी तुमको बहुत मान देना चाहिए, ये देवताओं को अक्कल है, देखो तुम यहाँ प्रकट हुई, सबको भाग भाग के तुम्हारे पास आना चाहिए था, वो लोग वहां अपना इंतजार कर रहे हैं अमृत मिलेगा, और तुमको तो बहुत मान देना चाहिए। तो सा मतलब वही तुम जो भगवान के द्वारा भेजी गई हो, इसलिए हमें ज्यादा तुम्हारी इंटेंशंस जानने की इच्छा नहीं है, हम तो बस तुमको ये बताना चाहते हैं कि सा तुम न स्पर्धे माना न, हमें कुछ स्पर्धा हो गई है, किसके लिए, अमृत अर्थे अमृत के लिए हो गई है, एक वस्तु नहीं, वो एक वस्तु क्या है, ये अमृत, अमृत का कलश जो है, ज्ञाति नाम बदवैरी नाम, बोले भाई झगड़ा हो गया, कौन है आप लोग, तो बोले कि हम सब ज्ञाति हैं, आपस में भाई लगते हैं, ये देवता और दैत्य जो है क्या लगते हैं, संबंध में भाई भाई हैं, ज्ञाति नाम बद वैर नाम, और हम लोग वैर से बंधे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत है, पहले भी लड़ाई झगड़ा बहुत था, मगर जब से ये एक वस्तु, जब से ये अमृत प्रकट हुआ, तब से तो झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया है, अब मतलब आउट ऑफ कंट्रोल झगड़ा हो गया है। तो संविधस्व सुमध्य में, तो एक संबोधन कर रहे हैं सुमध्य में, हे सुंदर मध्य प्रदेश वाली समविधस्व, तुम सम कर दो, इक्वल कर दो, लड़ाई झगड़ा खत्म करो हमारा, आपस में मिलान करा दो, और पंच बन के थोड़ा पंचायती करके दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज करवा दो, बस ये हम तुमसे चाहते हैं। तो वास्तव में वो डर गए थे, वो मन में सोचने लगे कि बाद में अगर मोहिनी को पता चलेगा कि इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, और देवता लोग भी मेहनत किए थे अमृत के लिए, और पिलाए नहीं देवताओं को, अकेले देते पी गए, और दोनों आपस में क्या लगते हैं, भाई लगते हैं, तो मोहिनी कल को बोल सकती है, जब तू अपने भाई का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, छोड़ के जा सकती है ना, तुम लोग अपने भाई के नहीं हुए, कल को तुम मेरे को भी ऐसे ही करोगे, धोखा दोगे, तो मैं ऐसा धोखा नहीं खाना चाहती हूँ। तो डर गए कि कल को ऐसा ना हो कि उसके मन में डिस्ट्रस्ट आ जाए कि देखो ये लोग विश्वसनीय लोग नहीं है, तो सारी बात पहले ही खोल के बोलना शुरू कर दी, हम लोग का झगड़ा हुआ है, ये अमृत को लेके झगड़ा, कुछ देते बोल भी रहे थे, अरे क्यों बता रहे हो उसको, क्या जरूरत है उसको बताने की, नहीं नहीं बताने दो, बाद में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमारी फ्रेंडशिप एटर्नल होनी चाहिए, शाश्वत मित्रता चाहते हैं, आप लोग कभी कभी बड़ी बड़ी दुकानों पे देखते होंगे एटर्नल लव, है ना, ऐसा लिखा रहता है, दिल बना रहेगा, वो 14 फरवरी के आसपास तो बहुत देखने को मिलता है एटर्नल लव, वो लव एटर्नल नहीं है, वो वास्तव में तो जीव क्योंकि नित्यबद्ध है, एटर्नल लस्ट हम लोगों के पास जरूर है, मगर एटर्नल लव कहाँ है, वो तो केवल राधा और कृष्ण का है। वही डिवाइन और एटर्नल लव है। तो इस डर के मारे, अच्छा अब तो आज के श्लोक पे आ गए, तो कह रही है कि तुम लोग संबंधी कैसे हो, कथम युष्माक ज्ञातित्वम, तुम ज्ञाति कैसे लगते हो, और कथम व सुखम, मैं तुम्हारा सुख कैसे कर सकती हूँ। बोली ना सम, हमारे को सुख करो, हमें समान करो, तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ बताओ। तब आज के श्लोक में बोल रहे हैं, कह रहे वयम कश्यप दयाद, हम सब एक ही दयाद बोलते, ऐसे भाषा में दयाद बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, है ना, हम लोग एक ही परिवार एक ही खानदान के हैं, हम सब कश्यप मुनि की संतान है। भाई अदिति के गर्भ से जो जन्म लिए सब देवता हो गए, और दीति के गर्भ से जो जन्म लिए सब दैत्य हो गए, हम ऐसे दो पार्टी के हो गए है, पापा हमारे सबके एक ही है। वयम कश्यप दयाद, सब कश्यप मुनि की संतान है, आपस में भ्रातरी, हम भाई भाई लगते हैं। अच्छा अभी यहाँ क्या चल रहा था, बोल रही कृत पौरुष, हम बहुत बड़ा काम किए हैं। देखिए वो पूरी अपनी शक्ति पूरा टैलेंट लगा दिए थे मोहिनी को खुश करने के लिए। जब ये शुरू हो रहा था समुद्र मंथन, तो मंदराचल पर्वत लेके आए और वसु की नाक लगाए, तो नाक का फ्रंट हिस्सा जाके भगवान पकड़ लिए थे। तो असुर लोग कुछ बोले नहीं, मगर मन में भाव क्या थी कि कैसे है, वयंत शुद्ध संपन्न, हम लोग भी शुद्ध संपन्न है, प्राख्याता जन्म कर्म भी, हम लोग का जन्म बहुत, हम लोग जन्म में बहुत बड़े हैं, कर्म हम लोग बहुत बड़े बड़े करते हैं, और पढ़ाई लिखाई टैलेंट हम लोगों के अंदर बहुत है। अब तो पूरी शक्ति लगा दी, अपना सारा टैलेंट, अपना सारा जन्म सब कुछ लगा दिए एक मोहिनी को खुश करने के लिए, है ना। अखिल चेष्टा तदर्थ है, सारी की सारी चेष्टा क्या, मोहिनी को खुश करने के लिए। आचार्य लोग बड़ा सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि दैत्य लोग बोलने लगे हैं कि अरे ये समुद्र मंथन करके 14 रत्न मिले, अरे 14 के 14 रत्न तो तुम्हारे शरीर में हमको तुम में मिल गए हैं, और एक एक रत्न को कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हास्यम शंख निरभम, ये जो तुम्हारी हंसी है ना, यही वास्तव में 5 जन्य शंख है, वो विष्णु को मिला वो शंख तो क्या बजेगा, तुम हंस के कुछ बोल देती हो वो ध्वनि है असली ध्वनि। तो हास्यम शंख निरभम, और नितंब तुरग हो, और उच्चैसवा घोड़ा जन्म लिया था, बोले वहां तो एक मिला, यहाँ दो दो, तुम्हारे दो नितंब जो हैं यही उच्चैसवा है। और रंभादि जंघा द्वयम, ओ रंभा उर्वशी आदि ये जो अप्सराएं हैं, ये तुम्हारी जांग कितनी सुंदर है, वो अप्सराएं तो कुछ नहीं है इसके आगे। और वैद्यस्ते हृदयम, असली वैद, वैद कौन, वो आयुर्वेद रेख भगवान धन्वंतरी जो है, वो वैद है ना, सबसे बड़े वैद कौन है, धन्वंतरी, उन्हीं की सब परंपरा में वैद बने। बोले असली डॉक्टर तो तुम्हारा हृदय है, कोई तुमको गले से लगा ले उसका सारा रोग खत्म हो जाएगा, उसको फिर बाद में दवा दारू नहीं करनी पड़ेगी। तो वैद्यस्ते हृदयम, और धनुष भ्रुकुटी, एक धनुष भी उत्पन्न हुआ था, भागवत में तो केवल 10-11 कुछ रत्न लिखे गए हैं, ऐसे 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। तो बोले कि तुम्हारी जो भ्रुकुटी है, ये भ्रुकुटी धनुष के समान है। और मध्यम च ते दर्शनम, और वारुणी जो दारू उत्पन्न हुई थी ना शराब, बोले तुम्हारा दर्शन ही असली दारू है, वो कोई कर ले पी ले, बस आंखों से पी ले तो ऐसा नशा चढ़ जाएगा जो जल्दी उतरने वाला नहीं है। इसलिए स्त्रियों को प्रमदा भी कहा जाता है, मद यानी नशा और प्रमद यानी प्रकृष्ट रूपेण नशा, मतलब बाकी दारू तो पीने से नशा होता है, इसको देख लेने से, तद दर्शनम, तुम्हारे दर्शन से नशा हो जाता है। अवक्तम पूर्ण शशि, तुम्हारा मुख जो है वो पूर्ण चंद्रमा के समान है, वो शिव जी को तो दूज का चंद्रमा मिला, छोटा सा कटा छटा मिला, हम लोगों को तो पूर्ण चंद्र। तो अच्छा कोई भी बात गलत नहीं बोल रहे देते, वो भगवान में सब कुछ है तो कोई गलत बात नहीं है, और भगवान का मुख तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से ज्यादा सुंदर है ही, उपमा दी ही नहीं जा सकती है। अच्छा और कह रहे हैं सुधा अधर, तुम्हारे जो अधरामृत है वो ही वास्तव में अमृत है, ये अमृत का कलश ही तो बेकार है, देवता लोग इसी के पीछे है, हम लोग तो तुम्हारे होठों का अमृत पियेंगे। और दंतम मणि शेयद, और जो तुम्हारे दांत हैं यही है कौस्तुभ मणि, तो वो विष्णु को मिलाए एक कौस्तुभ मणि, हमको 32 मिल गया तुम्हारे 32 32 जो मणि है ये है असली कौस्तुमणि, वो क्या चमकेगा, वो इतना ज्यादा चमकते हैं तुम्हारे दांत और कांति श्री तुम्हारे जो देह से, अप्राकृतिक देह से, कहने का मतलब अप्राकृतिक नहीं है, अगर अप्राकृतिक देह से जो कांति निकलती है वही वास्तव में लक्ष्मी स्वरूप है। और कह रहे हैं कि गमनम गजह, तुम्हारी चाल वही एरावत हाथी है, और एरावत की तो गज गामिनी हो तुम, और परिलंबते पारिजात्रुम, तुम्हारे देह से जो खुशबू निकलती है तो वो पारिजात वृक्ष से ज्यादा अच्छी लगती है। पारिजात वृक्ष में क्या खुशबू है, और वाणी काम दुग्धा, और तुम्हारी बोली कैसी है, वो कामधेनु गाय है। ये ऋषियों को भी घाटा मिला, उनको कामधेनु गाय मिली, उससे ज्यादा अच्छा तो तुम्हारी वाणी है। और पूछी कि वो सबसे पहले विष निकला था वो, तो बोली बोले कि तुम्हारी कटाक्ष जो है वो ही जहरीली है। कटाक्ष जो है तुम्हारा, और टेढ़ी तिरछी निगाह से जो तुम देख देती हो, ये है कालकूट विष वास्तव में। तो एक तो श्रुत संपन्ना, उन देखिए असुरों के अंदर एक भाव हमेशा रहता है, श्रुत संपन्ना, प्राख्याता जन्म, प्राख्याता कर्म, उसी भाव में वो मोहिनी से भी बातें कर रहे हैं। तो पहले तो उसको शुद्ध संपन्न दिखाए, हम लोग कितने बड़े कवि हैं, कितनी सुंदर रचना करना जानते हैं, ठीक है वैष्णव लोग भी बनाते हैं, सूरदास जी पद लिखे, तुलसीदास जी लिखे, हम लोग ज्यादा अच्छे सॉन्ग्स लिखना जानते हैं, हम लोग बहुत बड़े कवि हैं। और उसके अलावा फिर जन्म, प्राख्याता जन्म, हमारा जन्म बहुत ऊंचा है, हम लोग क्या है, वयम कश्यप दायादा, हम लोग कश्यप मुनि की संतान है। और उसके बाद कर्म भी बताना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि बस स्कूल में जन्म लिए हैं, हम लोग बड़े बड़े कर्म भी करते हैं, समुद्र मंथन में हम ही लोग ज्यादा काम किए, अरे देवता लोग तो मोबाइल में लगे थे, ज्यादा वो कुछ नहीं किए, सारी मेहनत हम लोग किए हैं। वो क्या करते, सेवा के समय मोबाइल में लगा रहता था, हाँ वो ज्यादा कुछ नहीं किया प्रभु जी, सच्ची बता रहा हूँ, जो किए कृत पौरुष, हम लोग ज्यादा भारी काम किए हैं। तो विभजस्व यथा न्यायम, तुम विभाजन कर दो, ये अमृत जो फल मिला हमको, इस फल को यथा न्याय बांट दो, ये काम तुम कर दो, इससे हम सुखी होंगे, ये हमारे सुख का विधान है। अच्छा बोलने में तो ऐसे असुर लोग जो हैं, देखिए जब भी कोई व्यक्ति कोई प्राकृतिक गीत गाता है, कोई सांसारिक रोमांटिक गाना या कोई और गाना गाता है, तो सरस्वती बड़ा माथा पीटती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब कोई कविता रचने लगता है तो सरस्वती माता बड़ा सुख मान के उसकी जीवा पर आना चाहती हैं, और आती हैं और देखती हैं सरस्वती माता कि ये तो भगवान का गुण नहीं गा रहा, तो बड़ा माथा पीटती हैं, हाय हाय काहे को यहाँ गई मैं। मगर अगर कोई भगवान का गुण गाता है तो सरस्वती माता बहुत आनंद मनाती हैं। अब यहाँ पर वो लोग अपनी दृष्टि तो एक सांसारिक लड़की की वर्णन करने में लगे हैं, उससे बात कर रहे हैं, मगर सरस्वती माता अभी भी सुख मान रही हैं, क्यों, क्योंकि बात एक्चुअल में भगवान से कर रहे हैं, वर्णन जो कर रहे हैं भगवान का कर रहे हैं। तो सरस्वती ही उनके मुख से बुलवा दी कि विभजस्व यथा न्यायम, यथा न्याय, जैसा न्याय हो, जैसा ठीक हो वैसा बांटना। तो न्याय क्या है, वास्तव में न्याय यही है कि असुरों को अमृत ना दिया जाए। वो एक्चुअल में मनाना चाहते थे, उसको समझाना चाहते थे कि देखो हम लोग कितना उदार बुद्धि के हैं, हम लोग भेदभाव नहीं करते, हम लोग बहुत उदार बुद्धि के हैं, हो सकता है कि देवताओं के अंदर भेद बुद्धि हो मगर हमारे अंदर कोई भेद बुद्धि नहीं है, हम लोग तो एकदम, दोनों लोग मेहनत किए तो दोनों को मिलना चाहिए, यथा न्याय, जैसा न्याय हो तुम वैसा बांटना, नेव भेदो यथा भवेत, भेद ना हो ऐसा ही बांटना। ये असुर लोग प्रायः ये शोर मचाते रहते हैं कि भेद नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, मगर जानते हैं ये शब्द प्रयोग करके भी वो लोग पार्शियलिटी ही करवाना चाहते हैं। आप देखेंगे कई लोग दूसरे के यहाँ की निंदा करेंगे, ऐसे बोलेंगे अरे तुम्हारे इस कौन में तो बड़ा ग्रुपिज्म है, और ये बात बोल के उन लोगों को अपने ग्रुप में ले आते हैं, ये होता है, नहीं होता है, यही होता है। तो इसीलिए महाप्रभु केवल भेद का ही खंडन नहीं किए, अभेद का भी खंडन किए ना, अचिंत्य भेदा भेद दिए, कि भेद नहीं करना वो बात तो ठीक है, प्राकृतिक दृष्टि से भेद नहीं करना चाहिए, संसारी देहात्म बुद्धि के आधार पर भेद करना उचित नहीं है, मगर भगवान भी भक्ति के आधार पर भेद करते हैं और वही सबको सिखाए हैं कि भक्ति के आधार पर। अब भक्त हैं देवता तो उनको अमृत देंगे, और वो लोग भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करते, नहीं शरण न देते हैं। सुखदेव गोस्वामी अंत में कमेंट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि देवताओं को अमृत मिल गया और असुरों को नहीं मिला। अरे सम देश काल हेतु अर्थ कर्म, सब कुछ सेम था, जगह सेम था, स्थान सेम है, काल सेम है, सब कुछ सेम है, तो फल भी तो सेम होना चाहिए था। भगवान क्यों भेद किए? वो पहले ही बोल दिए थे यथा न्यायम, न्याय पूर्वक बांटना। तो भगवान मन में सोचे कि क्या सांप को दूध पिलाना चाहिए? नहीं पिलाना चाहिए, देवताओं को दे दूंगा यही न्याय है, और असुरों को नहीं दूंगा यही न्याय है। दोनों के प्रति वो लोग पहले ही बोले थे कि न्याय पूर्वक काम करना। तो इस तरीके से वो इसलिए न्याय चाहते थे कि कहीं बाद में मोहिनी ये ना बोल दे कि ये छीना झपटी वालों के साथ तो हम नहीं मित्रता करना चाहती, तुम लोग बड़े बदमाश हो, जब दोनों एक साथ मेहनत किए थे दोनों को मिलना चाहिए था, तो कल को ऐसी बात बोल के मोहिनी हम लोगों को छोड़ के ना चली जाए। इस वजह से बोल रहे हैं न्याय पूर्वक बांटना, पार्शियलिटी नहीं, इक्वल बांटना। तब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं इति उपामंत्रितो दैत्येर माया योषित वपुहरि। तो इस प्रकार से जब उपामंत्र जब भगवान से प्रार्थना किए सारे दैत्य लोग, तो माया योषित वपु हरि, जो माया से अपनी योग माया से एक योषित वपु धारण किए, एक स्त्री का रूप धारण किए थे भगवान। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि क्यों स्त्री का रूप धारण किए, तो कई एक कारण देते हैं। एक कारण तो ये है कि भगवान मन में सोचे है कि जैसे पुरुषों में सबसे सुंदर नारायण है, कहीं लक्ष्मी को यह अहंकार ना हो जाए कि स्त्रियों में सबसे सुंदर मैं हूँ। तो भगवान बोले कि मैं स्त्री बन के लक्ष्मी का अहंकार खत्म कर देता हूँ कि सबसे सुंदर उसमें भी मैं ही हूँ, तुम नहीं हो। एक कारण ये, और दूसरा कारण ये कि भगवान मन में सोचे कि ये स्त्री का रूप ही छल करने के लिए ठीक है, तो जब छल करना है तो माया योषित, अपनी माया से योषित वपु, स्त्री का रूप धारण किए भगवान हरि। और प्रहस्य रुचिरा पांगेर, तो स्व अभिलाषा सिद्धिअर्थम, वो भगवान देखे कि हमारी अभिलाषा तो सिद्ध हो रही है, ये लोग पूरा पूरा हमारे कंट्रोल में आ चुके हैं। अगर असुरों को पहले से पता होता कि ये भगवान है तो कभी समर्पण नहीं करते, मगर उनको पता नहीं था कि भगवान है इसलिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिए, बोले सब कुछ तुमको जैसे तुम। अच्छा, तो इस तरीके से भगवान हंसे, प्रहस्य और रुचिरा पांगेर, और बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। और अपांगी यानी कि एक स्त्री उचित जैसा व्यवहार होता है, थोड़ा लज्जाना, थोड़ा नीचे देखना, नीचे देख के फिर टेढ़ी आँख से किसी की तरफ देखना। और वो करोड़ों करोड़ों देते थे, भगवान सबको ऐसा महसूस कराए कि उन्हीं को देख रहे हैं, और किसी को ऐसा ही लगता था कि इसकी नज़र किसी, भगवान कर सकते हैं एक बार में सबको ऐसा महसूस करा रहे थे कि उसके अलावा किसी को नहीं देख रहे, तो कभी नीची नज़र करते, कभी एक आँख से उसको देखते और फिर मुस्कुरा देते। और निरीक्षण देखे उसके बाद एकदम अब्रवीत, इस प्रकार से भगवान बोले। तो श्री भगवान उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहने में बड़े सावधान है। एक तो श्री शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े सुंदर लग रहे थे, उनके सुंदरता, मोहिनी रूप तो बड़ा सुंदर है ही निश्चित रूप से, जब शिव जी को मोहित कर सकता है तो कितना सुंदर होगा, तो श्री से युक्त है। मगर मोहिनी उवाच ना कह के क्या बोल रहे हैं, भगवान उवाच, जिससे कि जो श्रोता गण है वो ना भूले कि ये भगवान है, वो भटकेंगे नहीं। तो देखिए, जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम, तो ये जो बोलने में बहुत सावधान है, इसलिए उनके मुख से यदि हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम, पढ़ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो ऐसा नहीं है कि उस मोहिनी का चिंतन कर करके हम लोग भी मोह को प्राप्त हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी बहुत स्नेह से भरे हुए गुरु हैं, इस वजह से हम सबके हित को एडवांस में सोच के उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम लोग अपने ट्रैक पर बने रहेंगे, विचलित नहीं होंगे। तो श्री भगवान वाच, बोलने में इतना सावधान है कि ये नहीं बोले कि मोहिनी वाच, मोहिनी वाच बोलने से हो सकता है कि हम लोग कल्पना करने लगते हैं कि मोहिनी इतनी सुंदर है, उसकी आँख ऐसे है, मोहिनी बोल रही है, अच्छा क्या बोलती है, ध्यान से सुन लेते हैं हम लोग भी। सीधा सीधा बोले भगवान वाच, भगवान बोले। और भगवान बोलने के बाद बोले, अरे कथम, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कश्यप दायादा, आप लोग अपने आप को कश्यप मुनि की संतान कह रहे हैं, इतना बड़ा ऋषि मुनि की संतान, और पुंशल्यामयी संगता, मेरे जैसी पुंशली, मेरे जैसी वेश्या के संग में आप लोग आ रहे हैं। अगर आप लोग सच में कश्यप मुनि की संतान है तो इतना काम कैसे भाई, कुछ पिता के अकॉर्डिंग आपका लक्षण होना चाहिए ना। बात करने में तो हम लोग कश्यप मुनि की पुत्र के पुत्र हैं, और ये स्थिति कैसे हो गई, इतना बड़ा ऋषि मुनि का नाम ले रहे हैं और काम आप लोग का चरित्र कैसा है, इतना कामी है आप। मैं रहा चलती एक स्त्री हूं, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगना और उससे इस तरीके से बात करने लगा, ये सब शोभा देता है। थोड़ा देखना भी चाहिए कि किस परिवार से लिंक है आपका, आपका पिता कौन है। ये जब अदिति माता से कश्यप मुनि उधर बलि महाराज के प्रसंग में पूछने लगे कि घर पे सब कुछ ठीक है, और क्या अतिथियों की सेवा ठीक से होती है, क्या ये ठीक से होता है, क्या वो ठीक से होता है, तो अदिति माता बोली, आप लोग कुछ भक्त लोग आगे आगे आ सकते हैं, उधर जमघट लग रहा है थोड़ा। तो अदिति माता बोली कि देखिए सब कुछ ठीक है, किसी अतिथि का अपमान नहीं हुआ, किसी गरीब को ना दी हूं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमेशा मैं अपना संबंध आपसे याद करती हूं, और आपसे याद करती हूं तो जो करती हूं भलाई कर देती हूं, कभी गड़बड़ होती नहीं। तो थोड़ा आपको अपने पिता से संबंध भी याद करना चाहिए। अब भगवान वास्तव में ये सब क्यों बोल रहे हैं, उनको और अनुकूल करने के लिए बोल रहे हैं। कह रहे हैं यदि तुम कथमेव, यदि तुम कश्यप मुनि की संतान हो तो कामिनोभूत, ऐसा कामी कैसे हो गए। थोड़ा अपने पिता पे विचार करना चाहिए, उसके हिसाब से आपका भी चरित्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये बोलने के लिए हम लोग बोले कि हम प्रभुपाद जी के हैं, तो प्रभुपाद जी के हैं तो कुछ चरित्र हम लोग को वैसा मेंटेन करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे ऐसे इतना ऊंचे संत से अपना संबंध जोड़ के बोल रहे हैं। तो कुछ बात तो सही बोल रहे हैं भगवान। कह रहे कथम कश्यप दायादा पुंशाल्यमयी संगता, मेरे जैसे पुंशली, जो पुमसी पुमसी चलती थी पुंशाली, जो कभी एक पुरुष के पास जाए फिर उसको छोड़ के दूसरे पुरुष के पास जाए तीसरे के पास जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, पुंशाली बोलते हैं, मतलब उसको वेश्या बोलते हैं। प्रभुपाद जी कई जगह बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं, मगर युक्ति संगत लगता है, गड़बड़ तो नहीं लगता। एक जगह मृत्यु के पराजय में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यदि कोई स्त्री विवाह से पहले अवेलेबल है तो इसका मतलब वेश्या है। सोचना चाहिए कि अगर वो विवाह से पहले बात कर रही है आपसे, विवाह से पहले मिलना चाहती है आपसे, निश्चित रूप से उसका चरित्र बहुत मीठा तो नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, सज्जन तो नहीं है, सती तो नहीं है। वरना क्यों मिल रही है, क्यों बात कर रही है, क्यों मैसेज डाल रही है, कुछ तो सोचना चाहिए ना। तो एक पुरुष से दूसरे पुरुष, दूसरे से तीसरे पुरुष, जो ऐसे ही करती रहे उसको पुंशली कहते हैं। तो ऐसे मेरे जैसी पुंशली, आप लोग मेरी जाति जानते हैं, मेरा परिवार जानते हैं, मैं घूमते फिरते अकेली घूम रही हूँ देखे हैं, मेरा भाई मेरे साथ है नहीं, पापा साथ है नहीं, मेरा बेटा तो तुम्हारा तो शादी नहीं हुआ, वो तो हम समझ ही रहे हैं, तो कोई हमारे साथ नहीं है, और ऐसी मेरे पीछे पीछे तुम आ रहे हो, मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, तुम सच में कश्यप मुनि के संतान हो क्या, हमको नहीं लग रहा, झूठ तो नहीं बोल रहे। तो मगर ये भगवान क्यों बोल रहे हैं, तान मोही असी परिहासो व्यक्त ही। विश्वनाथ चक्रतिपाद कहते हैं कि वो भी भगवान मुस्कुरा मुस्कुरा के जानबूझ के बोल रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि उनको खराब ना लगे, उनको लगे कि अभी भी अपनेपन से बात कर रही है, इसको है हम लोग पसंद हैं, मगर जानबूझ के ऐसे बोल रही है कि आप लोग कामी जैसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं वो। तो इस तरीके से भगवान फिर बोले, विश्वासम पंडितो जातु कामिनी सुन याती ही। एक पंडित व्यक्ति जो हो, विद्वान व्यक्ति जो हो, वो कभी भी कामिनियों पर विश्वास नहीं करता। प्रभुपाद जी वही तात्पर्य में बोले कि चाणक्य पंडित ने कहा है कि राजा के ऊपर और कामिनी स्त्रियों के ऊपर विश्वास एक विद्वान पुरुष नहीं करता। एक मूर्ख व्यक्ति, बोका व्यक्ति कर सकता है, मगर एक विद्वान पुरुष विश्वास नहीं करता। तो इस तरीके से ओ दैत्य लोग बोले कि नहीं नहीं, तुम सही बोल रही हो, हम लोग कश्यप मुनि की संतान है, सब चक्रवर्ती पाटी का में लिख रहे हैं। कह रहे सत्यम वदम, तुम सत्य बोल रही हो। वयम स्त्री जीता मित्रेण भावे अशक्ति करम। कह रहे हैं कि कोई साधारण स्त्री हम लोग को आकर्षित नहीं कर सकती है। आप ऐसा मत सोचो कि किसी भी साधारण स्त्री के पीछे भाग जाते हैं। हम लोग वैसे नहीं, हमारे स्टैंडर्ड है, हम लोग कश्यप मुनि की संतान है। सत्यम, आप एकदम सत्य बोल रहे हो, मगर भवतया परम शुद्ध स्वरूपतया, आपका रूप जो है, आपका स्वरूप जो है, आप परम शुद्ध हैं, आपकी प्योरिटी से हम अट्रैक्ट हुए हैं, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं हुए, हम तो आपकी प्योरिटी से अट्रैक्ट हुए हैं। अरे तुमको क्या पता कि वो कितना प्योर है? सोचो पहले, तुमको कैसे पता कि वो इतनी प्योर है? अच्छा, हमें खूब बढ़िया से पता चल रहा है। एक साधारण स्त्री भी होती है, एक पुंसाली जो होती है, जो सच में वैश्य होगी, वो भी अपने आप को सती के रूप में एडवर्टाइज करती है। और तुम तो स्त्रियों की शिरोमणि हो, देखो विनम्रता की वजह से, तो तुम्हारी ह्यूमिलिटी है। तो अब भगवान सच बोल रहे हैं सब कुछ, मगर वो क्या समझ रहे हैं, विनम्रता दिखा रही है कि मैं तो पुंसाली हूं, देखो राह चलती भी हूं। तो कह रहे हैं, तू स्वपवित्रेण वयम विजिता, तुम अपनी पवित्रता से हम लोग का दिल जीत लियो। वट महे इति चेतः, तब बोलती है, तब बोल रही है, तब भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पुंसाली, अरे मैं तो पुंसाली हूं, तुम मेरे को ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मैं पवित्र हूं, तुमको कैसे पता? तब तो एकदम सर पकड़ के हाय हाय करने, हंत हंत, अरे ऐसे मत बोलो, हम मर जाएंगे, हम मारे जाएंगे, हंत हंत, प्लीज ऐसे मत बोलो, तो अपने आप को वैश्य मत बोलो। देखो हंत हंत भवत्या निष्कामत्व अवधिम, तुम निष्कामता की अवधि, मतलब लिमिट एकदम हो, कितनी तुम निष्काम हो, तुम कोई हम लोगों से प्रशंसा भी नहीं सुनना चाहती हो, तुम्हारे अंदर कोई काम नहीं है, कुछ नहीं, तुम बहुत निष्काम हो। तो किम स्तुवमा हे, तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी स्तुति करें, हम प्रशंसा करें? तो प्रायः लोग अपने आप को ज्यादा विनम्र कई बार इसलिए भी दिखाते हैं, बहुत हम तो कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है कह देंगे तो वो फोन पे दो चार बार और बोले, नहीं नहीं प्रभु जी, आप ये बड़ा काम किए थे, आप ये बड़ा काम किए थे। तुम अपनी विनम्रता दिखा रही हो तो हमसे अपनी स्तुति सुनना चाहती हो? अरे तो सुनो, तुम्हारे जैसी स्त्री तो 14 भुवन में नहीं है। तो कह रहे हैं हंत हंत भवत्य निष्काम, तुम तो निष्काम होने की एकदम अवधि हो, क्या स्तुति सुनना चाहते हो? तो यस्तम अबाल्यम, तुम तो कभी बचपन से ही, बाल्यकाल से ही, आज तक कभी किसी पुरुष ने तुम्हारी गंध तक नहीं सूंघी है। तो बात तो सही है, भगवान को कोई सूंघा है आज तक? भगवान तो इंद्रियातीत है, कोई पुरुष उनको कभी सूंघा नहीं। और इस तरीके से तुम अपने आप को छिपा रही हो। अरे स्त्री जाति पुंसाल्य अपि स्वयं सती में वह, एक स्त्री जाति का स्वभाव है कि यदि खुद वैश्य जैसी भी होगी तो पुरुष को क्या बताएगी, आपके अलावा मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, यही बताती है। और ये नहीं कभी बताएगी कि मैं सबसे यही बात बताती हूँ। ये बात वो कभी नहीं बोलेगी। क्या बोलेगी, मैं आपके अलावा किसी दूसरे से बात नहीं करती हूँ, यही बोलती है। तो बोली स्त्री जाति पुंसल अपि स्व सतीम एव प्रयतिति, कह रहे स्त्री जाति का स्वभाव है कि वो पुंसली होगी तब भी अपने आप को क्या बताएगी कि मैं तो बहुत बड़ी सती हूं, और आप जैसी सती, आप जैसी पवित्र नारी, भवत्या निष्कपट्य, आपके अंदर कोई कपट नहीं है, कितना आप ऐसे हमको बोल रही हैं, विनम्रता से आप बोल रही हैं, तो हम आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, बस आप एक बार बोल तो दीजिए। तब भगवान बोलते हैं, भो पंडिता, अरे रुको रुको, पंडिता विश्वासम पंडितम जातु, तुम लोग पंडित हो, मई विश्वासम ना कुरुतः, मुझ में विश्वास मत करो, न करो। कह रहे यद आत्मनम भद्रम इच्छति, यदि तुम अपना भद्र चाहते हो, मैं बाहर से कुछ दिखा रही हूँ, अंदर मेरे कुछ और चल रहा है। भगवान सोचे कि पहले से सब कुछ बता देते हैं एडवांस में, और जितना भगवान बता रहे थे उतना ही वो सोच रहे थे कि आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल रही है। आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल रही है, विनम्रता के कारण ऐसे बोल रही है, ये कितनी विनम्र है, परम पवित्र है, इससे ज्यादा पवित्र तो हमने आज तक कोई देखी नहीं। बोल रहे हैं देखो अंदर बाहर मेरा एक जैसा नहीं है, बाहर से मैं तुमको मोहिनी रूप दिखाई दे रही हूँ, तुम लोगों से मिलने आई हूँ, मगर मैं तो देवताओं को अमृत पिलाने आई हूँ। भगवान बोल रहे हैं, छिपाए कुछ नहीं, कह रहे हैं ऐसा पंडित व्यक्ति भूत और भविष्य की बातों को समझ के थोड़ा ध्यान पूर्वक काम करता है, तो तुम भी थोड़ा ध्यान से काम करो। कह रहे कामनिश्चय यद्यहम, तुम लोग जो मुझको शुद्ध समझ रहे हो, तो ऐसी शुद्ध मैं नहीं हूं, थोड़ा विचार करो, मैं एक यंग लड़की हूं, तो किसी भी यंग व्यक्ति में काम वासना बहुत रहती है, रजोगुण रहता है, 16, 17, 18, 20, 22, ये सब क्या है उम्र, काम वासना की उम्र है, इसमें बहुत प्रबल रूप से रहता है। इसलिए इस उम्र के लोगों को भक्ति करना कई बार मुश्किल भी लगता है, इंटरेस्ट नहीं लगता, कुछ बोरिंग लगता है। कारण क्या है कि वो उन सब कामनाओं में मन चित बार बार खींच खींच के जाता रहता है। तो बोले थोड़ा सा विश्वास विचार करो, देखने में कितनी उम्र लगती है, हाँ यंग दिखती हो। बोली हाँ मैं यंग हूँ, तो यंग हूँ तो काम वासना तो है ही हमारे अंदर। दूसरा मैं ऐसी स्त्री हूँ कि स्त्रीत्व च कामिनी, एक तो स्त्री हूँ और दूसरी मैं भी कामिनी हूँ। और पति पुत्रादयः, किसी पति के बिना, पुत्र के बिना, भाई के बिना मैं घूम रही हूँ, स्वेच्छाचारिणी हूँ, तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं एक वैश्या नहीं बनूंगी। ऐसी कोई स्त्री यदि घूमे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्री को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए अपने पिता के द्वारा, अपने पति के द्वारा, और बड़े होने पे अपने पुत्रों के द्वारा सुरक्षित रहना चाहिए। तो आजकल तो इस बात का बड़ा ऑब्जेक्शन होता है ना, ये कोई सुना दिया जाए तो कैसा व्यक्ति सोचता है। एक अंतिम बात बोलूंगा, अभी पीछे है एक वीडियो आया था, उसमें एक माता जी है पत्रकार, तो अमोघ लीला प्रभु से बार बार बोल रही है, आप लोग स्त्रियों को स्वतंत्र क्यों नहीं छोड़ते, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़िए ना, वो चाहे एक पुरुष के साथ रहना, चाहे 10 के साथ रहना, चाहे 1,00,000 के साथ रहना चाहे, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों रोकेंगे। अच्छा देखिए, स्त्री को तो नहीं रोकेंगे, पीछे 5-6 साल पहले एक लड़का ब्रह्मचारी बना था, भरत प्रभु, तो वही मीडिया वाले क्या बोल रहे थे, तुम ब्रह्मचारी बन गए, साधु बन गए, माता पिता को छोड़ दिए। अरे माता पिता से पूछ के ब्रह्मचारी बनना चाहिए, माता पिता से पूछ के उनकी परमिशन लेके, उनको दुख देके तुम साधु, अच्छा अच्छा काम करने के लिए निकलेंगे, भजन करने के लिए निकलेंगे, तो माता पिता की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। और वो स्त्री को इतनी बड़ी छूट है कि वो 1,00,000 लड़कों के साथ रहेगी, मगर उसको बाप उसको मना नहीं कर सकता कि बेटी तू ऐसा नहीं करेगी। तो लोगों का फंडा क्या है, कितना सा फंडा है कि भोग में बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि भोग अच्छे मिल रहे हैं तो लड़के को माता पिता से पूछ के ब्रह्मचारी बनना चाहिए, है ना। वो माता पिता, अच्छा वो माता पिता लड़के को रोक सकते हैं, लड़के को माता पिता की सुननी चाहिए, मगर लड़की को ना माता पिता की सुननी चाहिए, ना पिता जो है वो लड़की को रोक सकता कि तुम ऐसा काम मत करो। मगर ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता बोल बोल के लोग लड़कियों को अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं, इस बात पे विचार करना चाहिए। सनातन संस्कृति में जितनी स्वतंत्रता दी गई है वो अपने आप में बहुत पर्याप्त है, और किसी भी व्यक्ति को कुछ मर्यादा में जीवन जीना पड़ता है। तो सनातन संस्कृति में मर्यादा और स्वतंत्रता बहुत बैलेंस है, मगर यदि इस बैलेंस को तोड़ के स्त्रियों को स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, बस इसका नारा लगाते रह रहे हैं, तो जो लोग स्वतंत्रता दिलवा रहे हैं वो शोषण कर रहे हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए और चाहे अफगानिस्तान में जाके देख लीजिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बिना घबराए हमेशा एकदम स्पष्ट बोलते थे कि स्त्री को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और उसको भी उस सुरक्षा के अधीन रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो ये वुमेन मिनिस्ट्री और चाइल्ड मिनिस्ट्री ही क्यों बनाई जाती, कुछ मेन मिनिस्ट्री भी तो होनी चाहिए थी। इसका मतलब सरकार भी व्यवस्था करती है स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, सरकार भी जानती है कि इनको ज्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो फिर शास्त्र वही बात बोलते हैं, तो क्यों बुरा लगता है, नहीं लगना चाहिए, शास्त्रों को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय।